ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर योगेश सूरी और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में एसडीजी भी कहते हैं, इसके बारे में आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो बस अगले 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, हम इनके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। सतत विकास लक्ष्यों पर कल नीति आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है और कैसे साल 2030 तक भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किस तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है, इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार योगेश सूरी जी का। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी।
शुरुआत हम बिल्कुल एक मुख्य सवाल से करेंगे, ये सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, सबसे पहले ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। साथ ही जो कल रिपोर्ट जारी हुई है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, वो क्या है, इस सूचकांक को लॉन्च करने का मकसद क्या था, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में ये सूचकांक कैसे भारत की प्रगति को मापता है, कैसे ट्रैक करता है।
धन्यवाद आदित्य जी। सतत विकास लक्ष्य, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही प्रमुख इनिशिएटिव रहा है यूनाइटेड नेशंस लेवल पे। साल 2015 में एक सब यूनाइटेड नेशंस से करीब 193 कंट्रीज ने मिलकर आपस में एक डिसीजन लिया कि 2030 के लिए वो कई सारे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से, जिनको हिन्दी में हम लोग सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, इस नाम से इन सभी देशों ने अपने आप को एक तरीके से कमिट किया है कि 2030 तक वो मानवता के आगे उसके लिए हम ये सब लक्ष्य अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसमें करीब 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं और ये इंसानी जीवन के हर एरिया को एड्रेस करते हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो जेंडर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंस्टीट्यूशंस है, क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। तो आप देखेंगे जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो सतत विकास लक्ष्य को छूने की कोशिश नहीं करता इसके अंदर। सो नीति आयोग ने यह रिपोर्ट 2018 से निकालनी शुरू की, कल जो हमने रिपोर्ट निकाली वो इस एरिया में करीब चौथी रिपोर्ट थी और मेन मकसद रिपोर्ट को लाने का यह है कि ताकि हम राज्यों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकें, हम देख सकें कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितना इनिशिएटिव ले रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम मापने की कोशिश करते हैं कि कौन सा राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस रैंकिंग से होता क्या है, जब हर राज्य देखता है कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन की भावना आती है कि हम और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें, और जब सब राज्य आपस में कॉम्पिटिशन की भावना से चलते हैं तो पूरा देश काफी तेजी से आगे बढ़ता है।
और इसी कॉम्पिटिशन को जब हम ट्रैक करते हैं, इसी कॉम्पिटिशन के जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जरिए ही ये किया जाता है।
बिल्कुल। और इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा, इसमें हम स्कोरिंग करते हैं, इसके अंदर करीब हमने 113 इंडिकेटर्स लिए हैं अलग अलग, जो करीब 16 गोल्स को अलग अलग तरीके से मापता है और हर इंडिकेटर में हम मार्क्स देते हैं 0 से लेकर 100 तक। तो 100 को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि 2030 में हमें अगर 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आज हमने कितने प्राप्त किए हैं, तो देशभर में जैसे अभी हम 71 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट ये भी मापती है प्रदर्शन, कितना अचीव कर चुके हैं और कितना आगे बचा है आपका अचीव करने के लिए।
और जो आपने 16 लक्ष्य बताए, जिनमें गरीबी उन्मूलन, भूख से मुक्ति, स्वच्छता, साथ में लैंगिक समानता, शिक्षा, ये सभी प्रमुख एसडीजी हैं, तो इनमें भी हर एक को ट्रैक किया जाता है इस सूचकांक में।
आपने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर 16 के 16 हमारे जो गोल्स हैं उसको ट्रैक करने के लिए हर गोल के अंदर एक अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं और इंडिकेटर्स में डिफरेंट भी जो पब्लिक डोमेन्स में जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करके हम इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स के हिसाब से हम मार्क्स देते हैं, तो हर गोल का एक अलग स्कोर होता है और सब गोल्स को जोड़ के एक पूरा नेशनल स्कोर बनता है और सिमिलरली हर राज्यों का भी गोल वाइज स्कोर्स अवेलेबल होते हैं सिस्टम के अंदर।
जी, हमने समझ लिया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कैसे काम करता है, कैसे स्कोर हर राज्य करते हैं और उनमें एक प्रतिस्पर्धा बनती है जिसका रिकॉर्ड हर साल जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, जो आपने बताया। अब आते हैं कल की रिपोर्ट में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं, क्या प्रमुख निष्कर्ष हैं?
अच्छा जी, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं दुनिया में इस तरह की बड़ी यूनिक रिपोर्ट है। ऐसे बहुत कम ही देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट निकाली है जो इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सतत विकास लक्ष्यों को मापने की कोशिश करता है। तो कल जो हमने रिपोर्ट निकाली, काफी उसमें अच्छे अच्छे चीजें निकल कर सामने आई हैं, जो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले एक दशक के अंदर, उससे हिंदुस्तान ने काफी तेजी से तरक्की करी है। हमने देखा कल की रिपोर्ट में 16 में से करीब 11 गोल्स ऐसे हैं जो परफॉर्मर की कैटेगरी में आ गए। परफॉर्मिंग कैटेगरी मतलब ये होता है कि जिनका 65 से अधिक स्कोर है। सबसे चिंता के विषय वो होते हैं जिनके स्कोर जो है 50 से नीचे रहते हैं और आज सिर्फ एक गोल नंबर 5 ऐसा है, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हमारा जो स्कोर है भारत का 50 से नीचे है, हालांकि उसमें भी हमने 2018 2018 से काफी तरक्की की है। 2018 में हमारा 36 स्कोर था जो बढ़ के 49 हो गया है, तो जस्ट मार्जिनली 50 से नीचे है। उसके अलावा ज्यादातर गोल्स में काफी अच्छी तरक्की हुई है। सबसे ज्यादा जो देश ने तरक्की की है वो है क्लीन एनर्जी फ्रंट पे, जिसमें अभी 100 में से आप कह सकते हैं 96% मार्क्स उसको क्लीन एनर्जी पे मिल रहे हैं। जो हमने सोलर एनर्जी के लिए काम किया, जो हमने क्लीन कुकिंग फ्यूल देने के लिए काम किया, करीब 10-11 करोड़ कनेक्शन दिए गए। दूसरे नंबर पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो स्वच्छ भारत अभियान पे जो इतना जोर रहा है पिछले कुछ सालों में, उसमें 89 का स्कोर है। तीसरा सस्टेनेबल सिटीज 83, तो करीब 11 गोल्स ऐसे हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। उसके अलावा बेस लाइन से भी देखें तो कुछ गोल्स ने बहुत अच्छी तरह तरक्की करी है देश में, और सबसे महत्वपूर्ण उसे कह सकते हो नो पॉवर्टी। हम लोगों ने हाल ही में एक मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर भी एक रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी करी थी, जिसमें हमने देखा पिछले 9 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी में जाने से बच गए हैं। और सिमिलरली हेल्थ के एरिया में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत स्कीम हो, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात हो, चाहे उसके अलावा हमने जो ICDS के हम काम कर रहे हैं, जैसे पोषण के लिए जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, हंगर के लिए सरकार जो काम कर रहे हैं, तो इन एरियाज में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसकी वजह से काफी फायदा हुआ है। डिस्कोर्स में भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
यानी बिल्कुल स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन करता चल रहा है। अब हम आते हैं राज्यों पर। राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा है इस सूचकांक में? किन राज्यों ने सबसे बेहतर प्रगति दिखाई है और कौन से राज्य पीछे रह गए हैं और उनके पीछे कारण क्या है?
अतीत हमारी इस रिपोर्ट को निकालने का मुख्य कारण यही है, जैसे कि मैंने कहा कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। और मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि सभी राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल की रिपोर्ट में हमने देखा है कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका स्कोर पिछली रिपोर्ट की तुलना में कम हो। और सभी राज्यों का अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो अभी जो स्कोर इस साल निकल कर आया है वो है करीब 57 से लेकर 79 तक स्कोर, जो पहले था 52 से लेकर 75 तक। तो हर राज्य ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। सिमिलरली अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो वो 65 से 77 का स्कोर रहा है, जो पहले 62 से 79 रहा करता था। और हर्ष की बात यह है कि पिछली बार की रिपोर्ट में करीब 22 राज्य ऐसे थे जिन्होंने फ्रंट रनर की कैटेगरी प्राप्त की थी। फ्रंट रनर जैसे मैंने बोला जिनका 65 से अधिक स्कोर रहा है। इस बार 32 स्टेट्स ऐसे हैं, 32 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी 36 में से आप मान सकते हैं कि यानी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अब फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए हैं। अब इंडिविजुअल राज्य पे जाएं तो उत्तराखंड और केरला नंबर एक स्थान प्राप्त करते हैं, दोनों का स्कोर 79 है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ एक लीडिंग है जिसमें 77 स्कोर है। बट 2018 से एक और चीज हमने रिपोर्ट में निकालने की कोशिश करी, ये तो पिछले एक साल की तरक्की हुई, तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने 2018 की रिपोर्ट के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है? तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जैसे हमारा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर आता है, जिसमें स्कोर में करीब 25 की बढ़ोतरी हुई 2018 से 2024 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसने 21 के स्कोर की बढ़ोतरी हुई। फिर उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा 17, इसलिए असम, पंजाब, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये वो राज्य हैं जिन्होंने पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है SDGs के ऊपर।
जी बिल्कुल, राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सरकार जो योजनाएं चलाती है लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए उन्हें कैसे लागू करते हैं। अगला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, सरकार के वो कौन से प्रयास हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रहे हैं?
अरे कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां सरकार ने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया हो और जिससे हमें SDG में इम्पैक्ट करने में मदद ना मिली हो। उसके अंदर चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन है, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन है, चाहे सब लोगों के लिए जो हाउसिंग फॉर ऑल, जो सबको मकान देने की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत, क्लीन कुकिंग फ्यूल, एनर्जी, ये सारे एरियाज में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने थोड़ा बताना चाहूंगा जिससे क्लियरली हमें SDGs में अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर करीब 4 करोड़ घर बनाए गए हैं और अभी हाल ही में सरकार ने आगे भी तय किया है कि 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर करीब 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। LPG कनेक्शन करीब 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए हैं। हर घर जल, हर घर नल, तो जो टैप वाटर कनेक्शन है, करीब 14.9 करोड़ हाउस होल्ड तक अभी पानी नलकों से उनके घर तक पहुंच गए हैं। आयुष्मान भारत में 30 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी एक्चुअली बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि 55 करोड़ का सरकार का टारगेट है। उसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है हर महीने। 1.5 लाख करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गुड गवर्नेंस, हर चीज का जो सरकार का रहे कि जो भी कार्य किए जाए गुड गवर्नेंस उसके अंदर रहे है। उसके अंदर सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना काफी नहीं है, सरकार का कोशिश यही रहता है कि गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीजों ने देखा है, टेक्नोलॉजी को यूज करके रियल टाइम बेनिफिट्स लोगों को पहुंचाया जाए, उनके जनधन खाते खोले गए। तो हर लिहाज से सरकार की स्कीमों से SDG अचीव करने में बहुत अच्छा मदद मिली है।
जी, सरकार पहले भी योजनाएं चलाती थी पर उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होता था, वो लोगों तक कैसे पहुंचती थी, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखा गया जब भारत सरकार जैम ट्रिनिटी लेकर आई। तो जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जब आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी राशि जो प्रधानमंत्री जी एक क्लिक में सीधे भेज देते हैं और वो किसी किसान के, किसी मजदूर सुदूर के किसी गांव में बहुत सुदूर बैठे व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे पहुंचते हैं बिना किसी बिचौलिए के। तो सरकार का ये प्रयास, क्या आप मानते हैं कि हमारे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है?
बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने। टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भारत का, आज सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में उसको बहुत सम्मान के नजरिए से देखा जाता है और करीब 40-50 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत को रिक्वेस्ट किए हैं कि वो भी अपने अपने देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के हिसाब से अपने देशों में लागू किए जाएं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत सशक्त इंस्ट्रूमेंट हो रहा है पिछले कुछ सालों में सरकार के लिए, और देखा गया करीब 34 लाख करोड़ के बेनिफिट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली लोगों के बैंक खातों में पहुंचा दिए गए और इसमें करीब 55 करोड़ जनधन खाते खोले गए। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोबाइल नंबर, जनधन और ये आधार नंबर, तीनों मिला के जो ट्रिनिटी है, इन ट्रिनिटी से कोई भी स्कीम हो जहां डायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुंचाना है, इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता मेरे विचार में।
अब हम बात करते हैं चुनौतियों की। सतत विकास लक्ष्य भारत हासिल कर सके, इसमें आप किन चुनौतियों को प्रमुख मानते हैं?
दो गोल्स ऐसे हैं अत्रे जी जिसमें अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। एक है जीरो हंगर, जो गोल नंबर 2 माना जाता है, जिसमें अभी स्कोर हमारा 52 पे है, और दूसरा है विमेन जेंडर एम्पावरमेंट, जो गोल नंबर 5 है, जेंडर इक्वालिटी, और उसमें स्कोर भारत का भी 49 है। तो ये दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें अभी काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने बोला, जेंडर वाले गोल के अंदर पहले हमारा स्कोर 36 हुआ करता था जो 2018 में, अभी बढ़कर 49 हो गया है। हम 50 से जस्ट एक नंबर कम है, लेकिन सिर्फ 50 ही हासिल नहीं करना है, हमें विमेन एम्पावरमेंट को बहुत आगे लेके जाना है। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस चीज को उन्होंने जोर दिया है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट पे जाना है, सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट तक ही सीमित नहीं रहना है। और सरकार की स्कीमें भी ऐसी बहुत सारी चल रही हैं जो विमेन लेड डेवलपमेंट, बट लेकिन अभी इसमें काफी काम करने की अभी गुंजाइश है, जीरो हंगर में भी, विमेन लेड डेवलपमेंट में। उसके अलावा एक दो गोल्स और ऐसे, इंडस्ट्री इनोवेशन में थोड़ा और स्कोप है अभी करने का, और एजुकेशन में भी अभी काफी स्कोप है। हालांकि कई चीजें एजुकेशन में हमने काफी अच्छी अचीव कर ली है, लेकिन एजुकेशन में अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक ऐसा एरिया जहां पर और कार्य करने की गुंजाइश है।
और सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है वो इसी दिशा में इन लक्ष्यों को हासिल करने में जरूर अपना योगदान देगी।
बिल्कुल ठीक कहा जी।
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी रफ्तार को बनाए रखने में भारत के अगले कदम क्या होंगे? भविष्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?
अरे जी, पहले तो ये 2030 तक के लक्ष्य, ऑलरेडी इस पे काफी अच्छे से काम चल रहा है, और जैसे ही कल हमने कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस किया था, इसके अंदर हम पूरी तरह से जोर दे रहे हैं कि भारत 2030 तक के अपने लक्ष्य पूरे हासिल कर ले। और आगे चल के हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो उसमें काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जो एक्चुअली स्टेट्स के डोमेन में ही आते हैं डायरेक्टली, तो उसमें राज्यों को थोड़ा और, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी जिनका स्कोर कम है, उनको थोड़ा और चैनलाइज करने की जरूरत है, थोड़ा और एक्टिवेट करने की जरूरत है। उसमें नीति आयोग काफी काम कर रहा है, हमने करीब 11 राज्यों में एसडीजी कोऑर्डिनेशन सेंटर्स खोले हैं जहां हम जाके उन राज्यों की पूरी मदद करते हैं किस तरीके से अपनी नीतियां बनाएं ताकि एसडीजी को अचीव करने में पूरी तरह मदद मिले। और दूसरा, ये सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में सिर्फ सरकार ही नहीं है, आई थिंक इसको पूरे होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की जरूरत है, जिसमें देश के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो केंद्र सरकारें हों, राज्य सरकारें हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, एकेडमी हो, थिंक टैंक्स हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़े बात, सिटीजन देमसेल्व्स, खासकर क्योंकि जब तक सिटीजन खुद ध्यान नहीं रखेंगे, उसके लिए हमने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का भी नीति आयोग ने एक शुरुआत की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट पर भी उस पर काफी काम वो लोग कर रहे हैं। लोगों को अपने जीवन शैली में कुछ चेंज ऐसा लाना होगा ताकि वो एनवायरमेंट को देखकर ही सारे अपने कार्य करें। और आगे चल के प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया ही हुआ है विकसित भारत @2047, जो हमारा 100वां साल होगा जो भारत की इंडिपेंडेंस का, तो उस पर पूरा आगे कार्य करने की जरूरत है।
आप जब भारत को देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के जो 2023 तक का एजेंडा है उसे हासिल करने में भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है और दूसरे देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं?
मुझे काफी खुशी है कहते हुए, इस समय जब ग्लोबल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इस समय जो अभी हाल ही में यूएन ने कुछ स्टडी करी जिसमें देखा सिर्फ 17% ही ऐसे टारगेट्स हैं जो ट्रैक पे हैं, अगर 169 टारगेट्स में सिर्फ 17% ट्रैक पे हैं, और आधे टारगेट्स ऐसे हैं जो बहुत धीरे चल रहे हैं, और करीब एक तिहाई टारगेट्स ऐसे हैं जो बेस लाइन जो 2015 है उससे भी नीचे चले गए। तो ऐसे माहौल में हिन्दुस्तान की ये रिपोर्ट जैसे आप देख रहे हैं, और सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में, हमने पब्लिक डोमेन में सारा जो सरकारी स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जो आंकड़े इकट्ठे करता है उसी को हमने करके हमने इंडिकेटर बनाया, और उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस देखना ईयर बाय ईयर, जैसे हमने स्टार्ट किया 57 से स्टार्ट करके हम 71 पर पहुंच गए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और आगे भी मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान लक्ष्यों को हासिल करने का पूरा प्रयास कर रहा है और हासिल करेगा भी।
योगेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी।
अभी आप सुन रहे थे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर योगेश सूरी और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।